जब आप आए थे तो बहुत परेशान से लग रहे थे। वैसे मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, फिर भी अगर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। शायद मैं आपकी किसी काम ना आ सकूं, पर प्रॉब्लम को शेयर करने से वो कम हो जाती है। आरवी ने उसको विश्वास दिलाने की कोशिश की। एक उम्मीद थी उसे कि शायद अब उनका रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दोनों बेझिझक अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से बांट सकते हैं। शान कुछ पल खामोशी से आरवी के चेहरे को देखता रहा, फिर उसने कॉफी मग वापस टेबल पर रख दिया और अपने विचारों में खोते हुए गंभीरता से बोला, कभी कभी मुझे भगवान पर बहुत गुस्सा आता है। हालांकि मैं उन पर विश्वास नहीं करता, पर बड़ी माँ कहती हैं कि इस दुनिया में जो भी होता है सब उनकी मर्जी से होता है, तो जब कोई कुछ गलत करने जाता है तो वो उसे रोकते क्यों नहीं? क्यों वो सच्चाई से ज्यादा बुराई का साथ देते हैं? क्या उन्हें लोगों की तकलीफ नजर नहीं आती? कैसे भगवान है वो जो सही और गलत में फर्क नहीं समझ पाते और अच्छाई को हमेशा कसौटियों पर परखते हैं, तब तक जब तक उसकी हिम्मत दम ना तोड़ दे, वहीं बुराई को सर माथे पर रखते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट ही रियली वॉन्ट्स टू डू। शान की बातों में नाउमीदी के साथ साथ दुख झलक रहा था। वो यूं ही भगवान से शिकायत नहीं कर रहा था, इस शिकायत में उसका दर्द और तकलीफ छुपी थी जिसके लिए वो भगवान को दोषी ठहरा रहा था। और ठीक भी था, जब हमारे जन्मदाता और पालनकर्ता ईश्वर हैं, जब खुश होने पर हम सबसे पहले उन्हें याद करते हैं तो शिकायत भी उन्हीं से करेंगे, अपना दर्द भी उन्हीं के साथ बांटेंगे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई उनके बच्चों को नहीं समझ सकता। शान ने कह तो दिया कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, पर उसकी ईश्वर से की इस शिकायत ने उसकी बात को गलत साबित कर दिया था। विश्वास तो था उसे भगवान पर, लेकिन शायद किस्मत और हालातों ने उनके प्रति शिकायतों को जन्म दे दिया था और अब वो खफा था भगवान से, जैसे हम अपने माँ बाप से हो जाया करते हैं, बिल्कुल वैसे। आरवी बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उसने शान की हथेली पर अपनी हथेली रखी तो शान अपने दिमाग में घूमते विचारों से बाहर आया और आरवी के तरफ निगाहें घुमाई। आरवी ने उसके हाथ को मजबूती से थामते हुए कहा, भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हर जगह हर वक्त वो खुद नहीं हो सकते। हर किसी को वो खुद धरती पर आकर उसकी गलतियों का एहसास नहीं करवा सकते और ना ही वो हर किसी को आकर गलती करने से रोक सकते हैं। इसलिए उन्होंने इंसानों को दिमाग और सोचने समझने की शक्ति दी है, ताकि वो खुद भी गलत रास्ते का चुनाव ना करें और अगर किसी को गलत दिशा में बढ़ते देखें तो उसे भी सही रास्ता दिखा सकें। सही कहा आपने, सच्चाई को हर कदम पर कसौटियों पर तोला जाता है, पर सोना आग में तपने पर ही निखरता है। अच्छाई और सच्चाई का रास्ता बेहद कठिन है, बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, पर अंत में वही इंसान सबसे ज्यादा सुखी और खुश रहता है जिसने सच्चाई का रास्ता चुना होता है। बुरे रास्तों पर सहजता से आगे बढ़ा जा सकता है, खुशियां भी बेहिसाब मिलती होंगी, पर वो कुछ पल की खुशियां जीवन भर का सुकून कभी नहीं दे सकती। भगवान सच्चाई की परीक्षा लेते हैं, पर उससे हम ही निखरते हैं, पहले से बेहतर बनते हैं। इसलिए सच्चाई का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, हमें भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। आरवी ने गहरी सांस ली और आगे बोली, मुझे नहीं पता कि आज आप अचानक ये सब क्यों कह रहे हैं। आपके मुंह से ऐसी निराशा भरी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर भी अगर आप ये सब कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी। इसलिए मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि बुराई का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है और सच्चाई ही उसका विनाश करती है। इसलिए हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ देना चाहिए और हो सके तो बुराई को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये काम सिर्फ अच्छे और सच्चे लोग ही कर सकते हैं। आरवी ने बड़ी ही सहजता से अपनी बात उसको समझाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उसके कहे शब्द शान के मन पर गहरी छाप छोड़ गए थे। ठीक ही कहा था उसने, बुराई का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। जैसे आज निया की बुराई का घड़ा भर गया था, वैसे ही हर गलत इंसान का अंत एक ना एक दिन होना तो तय था ही। भगवान खुद नहीं आ सकते थे इस पाप को होने से रोकने के लिए, तो उन्होंने उसे जरिया बनाया और एक मासूम की जान जाने से बच गई। भगवान आज भी हर जगह मौजूद हैं, बस अब वो खुद से कुछ नहीं करते। उन्होंने गलत को रोकने की शक्ति हम इंसानों को दे दी है। शान यही सब सोच रहा था कि अचानक ही उसके जहन में कुछ बातें घूमने लगी और उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, जिन औरतों को बच्चों की कद्र नहीं होती, भगवान को उन्हें माँ बनने का हक देना ही नहीं चाहिए। अपनी खुदगर्जी में वो उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देती है। उसे कहे ये चंद बहुतों पर कटाक्ष कर रहे थे, जिनमें से एक शायद निया थी, पर आरवी उसके कहे शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ न सकी और परेशान निगाहों से उसको देखते हुए बोली, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? शान जैसे गहरी नींद से जागा। उसने आरवी को देखा जो आंखें बड़ी बड़ी करके परेशान सी उसको देख रही थी। अब उसका ध्यान अपनी कही बात पर गया और आरवी के रिएक्शन की वजह को समझते हुए उसने आराम से कहा, नहीं कुछ हुआ नहीं है, बस यूं ही जनरली कह रहा हूँ कि जिन औरतों को बच्चे की कद्र ना हो, जो उस जीती जागती जान को एक खिलौना समझे और अपनी खुदगर्जी के लिए उसकी जान लेने से भी पीछे ना हटे, उन्हें भगवान को औलाद देनी ही नहीं चाहिए। क्यों बेवजह उस मासूम को तकलीफ देते हैं जिसका कहीं कोई दोष ही नहीं। अब आरवी को उसकी बातें कुछ कुछ समझ आने लगी थी और उसने इस बात को अंशु से जोड़ दिया था। ठीक कहा आपने, जिन्हें बच्चों की कद्र नहीं उन्हें बच्चे नहीं देने चाहिए भगवान को। लेकिन जब तक कोई चीज आपके पास हुई ना, आपको उसकी कद्र समझ नहीं आती। जब कोई चीज या इंसान आपके पास हो फिर वो आपसे दूर चला जाए तो हमें उसकी कद्र समझ आती है। जिन्हें आज अपनी भूल का एहसास नहीं होता उन्हें वक्त उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है कि उन्हें तब शिद्दत से उस कमी का एहसास होता है जिसकी वजह वो खुद होते हैं, और तब उन्हें उसकी कद्र समझ आती है जिसे उन्होंने अपनी खुदगर्जी या बेवकूफी की वजह से खो दिया होता है। वक्त से ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं। वो आकाश की बुलंदियों को छूते लोगों को जमीन की खाक छानने पर मजबूर कर देता है, और अच्छे से अच्छे इंसान को जब वक्त की मार पड़ती है तो उसकी अक्ल ठिकाने आ ही जाती है। आज जिन्हें अपने पास मौजूद इंसान की कद्र नहीं है, कल को वही लोग उनके लिए तरसेंगे, पर उन लोगों की नजरों में उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। हमें बस धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हम चाहकर भी नहीं कर पाते वो वक्त कर देता है। शान ने अब पलटकर कुछ नहीं कहा। निया को कभी अपने गुनाहों का एहसास होगा इसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था, पर अब परेशान होने वाली कोई बात भी तो नहीं थी। भले ही निया अपने मकसद को पूरा करने के लिए उस मासूम को मारना चाहती हो, पर अर्जुन ऐसा कभी होने नहीं देगा। वो निया से अपना बच्चा भी लेगा और उसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकेगा भी। वो बच्चा सलामत भी रहेगा और निया की बर्बादी भी होगी, यही तो चाहिए था उसे। आरवी कुछ पल उसके साथ बैठी रही, फिर उसके कपड़े निकालकर उसको फ्रेश होने का कहकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ अर्जुन फुल स्पीड में सड़क पर कार दौड़ाए जा रहा था। चेहरे पर घबराहट और आंखों कुछ खो देने का डर था जो उसके लिए बेशकीमती हो। धड़कनें थम-थम कर चल रही थी। इतनी देर में उसने जाने कितने ही रेड लाइट क्रॉस की थी और कितने ही सिग्नल तोड़े थे। हमेशा ट्रैफिक के नियमों में पालन करने वाला अर्जुन आज बेतहाशा कार भगाए जा रहा था।
आज उसको बस अपनी आंखों के सामने अबॉर्शन के पेपर्स नजर आ रहे थे जो निया ने साइन किए हुए थे, और कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन प्रोसीजर शुरू होने वाला था। अगर उसको जरा भी देर होती है तो वो अपने बच्चे को पाने से पहले ही खो देगा। वो मासूम जो अब तक दुनिया में आया तक नहीं, वो निया की खुदगर्जी की बलि चढ़ जाएगा, और उसको किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को बचाना था। अर्जुन कार ड्राइव करते हुए कितने ही बार निया और उसके असिस्टेंट को फोन कर चुका था। उसके असिस्टेंट को इस बारे में कुछ पता नहीं था और निया फोन उठा नहीं रही थी। उसके ऑफिस से लगभग एक घंटे की दूरी पर था वो हॉस्पिटल जहां शायद इस वक्त निया मौजूद थी। मुंबई के आउटर एरिया में था डॉक्टर नंदिनी का हॉस्पिटल। अर्जुन इतनी तेज कार भगा रहा था कि उसने इस एक घंटे की दूरी को आधे घंटे में तय कर लिया। कार झटके से हॉस्पिटल के अंदर वाले गेट के सामने रुकी, और वो अभी पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि अर्जुन कार से निकलकर तेजी से अंदर की तरफ भाग गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से निया के बारे में पूछा। पहले तो वो बताने से इनकार करती रही, फिर जब अर्जुन ने गुस्से में उसको धमकाया तो उसने रट्टू तोते की तरह सबक दिया। अर्जुन तुरंत लिफ्ट की तरफ भागा और बेचैनी से थर्ड फ्लोर पर पहुंचने का इंतजार करने लगा जहां बने गायनाक ओटी में इस वक्त निया थी। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर रुकी और अर्जुन तेजी से लिफ्ट से बाहर निकल गया। नीचे रिसेप्शनिस्ट से वो गायनाक ओटी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन लेकर आया था, क्योंकि ढूंढने में बर्बाद करने को वक्त नहीं था उसके पास। वो तेजी से दाईं तरफ भागा जहां कुछ ही दूरी पर गायनाक ओटी का साइनबोर्ड लगा हुआ था। अर्जुन सीधे गायनाक ओटी का दरवाजा खोलकर गायनाक ओटी के अंदर घुस गया। अचानक से गायनाक ओटी का दरवाजा खुलने, अंदर मौजूद डॉक्टर नंदिनी जो निया के ऑपरेट करने वाली थी और दो नर्स जो उनकी हेल्प के लिए वहां थे, तीनों ने चौंककर दरवाजे की तरफ देखा। अर्जुन ने बेचैनी से निगाहें घुमाई और वहां ऑपरेटिंग टेबल पर लेटी निया पर जैसे ही उसकी नजर पड़ी उसकी आंखें गुस्से से जल उठी। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि एक नर्स उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सर प्लीज रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते, ये गायनाक ओटी है और अंदर अबॉर्शन प्रोसीजर चल रहा है। उसने अर्जुन को बाहर भेजना चाहा, पर अर्जुन जो पहले ही गुस्से में था वो एकदम से उस नर्स पर चीख पड़ा। हाँ जानता हूँ मैं कि यहाँ एक अजन्मे बच्चे की जान ली जा रही है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, और अब ये अबॉर्शन मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। नर्स तो शायद अर्जुन को नहीं जानती थी, पर अर्जुन को वहां देखकर डॉक्टर नंदिनी के हाथ में पकड़ा इंजेक्शन उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर चुका था, मतलब साफ था कि वो उसे पहचानती थी। अर्जुन की आवाज वहां लेटी निया के कानों में पड़ी तो वो चौंककर हिटकर बैठ गई और अर्जुन को वहां देखकर हैरानी से बोली, अर्जुन तुम यहां क्या कर रहे हो? निया की आवाज ने अर्जुन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। निया पर नजर पड़ते ही उसको अबॉर्शन पेपर्स याद आ गए और उसके भाव एकदम सख्त हो गए। उसने गुस्से में जबड़े भेज लिए। टू बी कंटिन्यूड।